फिर आगे दोबारा वही अहकामात। आप देखिए, सद्दे जराए जिना चल रहे थे, बीच में ये दो रुकू तकरीबन ईमान और निफाक के मुख्तलिफ रवैयों का तस्करा हुआ। अब दोबारा उन्हीं अहकामात में से एक और हुक्म, याय्लीना मनुलियस्ताजिनकुमुल्लजीना, ए लोगों जो ईमान लाए हो, लाजिम है कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी तक अकल की हद को नहीं पहुंचे, तीन औकात में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें। वो कौन से औकात हैं? सुबह की नमाज से पहले, साफ सुथरे होने का वक्त होता है, इंसान सो के उठा होता है, उसको अपने आप को पाक करना है। इस वक्त कहा कोई किसी के कमरे में भी नहीं आ सकता, बच्चा भी नहीं आ सकता। छोटे छोटे बच्चों की तरबियत अगर की होगी तो आप बताइए कि बड़े सार धाड़ मुंह फाड़ वाली बात करके घर में दाखिल होंगे। पीछे हमने क्या पढ़ा था, बाहर के लोगों के किसी के घर में आने के औकात। यहाँ घर में रहते हुए कोई किसी के घर में कमरे में नहीं आए, भाई बहन के कमरे में नहीं आ सकता, बेटी माँ बाप के कमरे में नहीं आ सकती, बेटा माँ बाप के कमरे में नहीं आ सकता, जवान बच्चे हैं एकदम मुंह उठाकर आप भी नहीं जा सकते उनके कमरों में, क्योंकि अल्लाह ने रखी है ये चीजें। खास तौर पे शादीशुदा कपल है घर में, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो इन सारी चीजों को सामने रखकर देखिए तो इस्लाम वो कवानीन देता है कि जिस पे अमल करके अगर हम 10 फैमिलियां भी साथ रहें तो कभी किसी के अंदर लड़ाई ना हो। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्यों ना काम हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे की प्राइवेसी में दखल बहुत देते हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। दूसरा वक्त दोपहर को, जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, यानी थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े जो इंसान बाहर जाते हुए पहनता है उसको करके हल्के रिलैक्सिंग मूड में आ जाते हो, जिसमें तुम्हें सोने में आसानी होती है, और ईशा की नमाज के बाद यानी रात को फिर सोते वक्त तुम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो। ये तीन वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक्त हैं। बताइए जरा, ये कुरान कहाँ उतरा था? अरब में उतरा था, बद्दू थे, पूरी दुनिया के कोई बहुत मॉडर्न लोग नहीं थे। अल्लाह ने कितनी फितरी बातें की हैं। आज जो कुरान को पढ़ के इसके अहकामात को समझते हैं वो दुनिया का सबसे महज़ब इंसान है। ये तो हम अमल ना करके इस्लाम को बुरा कहते हैं और मुसलमानों को बर्बरिक और फुलां फुलां कहलाते हैं। यकीन करें, इतना एटिकेटेड रिलीजन है हमारा कि ये जो आज हम कहते हैं थैंक यू, ओके, आई विल ओपन द डोर, छोटे छोटे एटिकेट जो हम वेस्टर्न कल्चर से सीखते हैं हम उस पर बड़े इंप्रेस हैं, लेकिन इस्लाम क्या सिखा रहा है? आप देखिए कि इस्लाम की ये बातें हकीकत में दुनिया को दिखाने वाली हैं कि देखो हमारा दीन कितना खूबसूरत दीन है। अब ये तीन वक्त गुजर गए, अब क्या करो? इनके बाद वो बिला इजाजत आए तो ना तुम पर कोई गुनाह है ना इन पर, तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने इरशादात की तौसीफ करता है, वो अलीम और हकीम है। एक सवाल उठ सकता है सिर्फ, अगली आयत को पढ़ के फिर देखते हैं, और जब तुम्हारे बच्चे अकल की हद को पहुंच जाएं तो चाहिए कि इसी तरह इजाजत लेकर आया करें जिस तरह इनके बड़े इजाजत लेते रहे। इस तरह अल्लाह अपनी आयत तुम्हारे सामने खोलता है, वो अलीम व हकीम है। अब सवाल पैदा होता है, बच्चों का माँ बाप से क्या पर्दा है? जी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, छोटे बच्चे हैं। तो याद रखिए कि इस्लाम ने एक तकद्दस रखा है, माँ बाप और औलाद के रिश्ते के बीच में एक बैरियर जरूर होना चाहिए। माँ बाप को बच्चा अपना रोल मॉडल समझता है, हर इंसान जिसको आप अपने से बड़ा समझते हैं वो आपके लिए रोल मॉडल होता है, आपने उसके लिए क्राइटेरियन रखा होता है जहन में। अब आप देखिए कि बच्चा जब माँ बाप को इस क्राइटेरियन पे देखता है, ये एक पर्सनालिटी हुई, एकदम बगैर इजाजत के कमरे में गया, हो सकता है कि माँ ने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, हो सकता है कि माँ ने कोई ढीला ढाला कपड़ा पहना है। अब बच्चे के जहन में माँ की वो फीलिंग आएगी ना, तो वो रिस्पेक्ट का मेयार कम होगा। यानी इस्लाम चाहता है कि महरम रिश्तों में भी तकद्दस हो। एक और बात भी याद रखिएगा कि इस्लाम ने जिना का हर दरवाजा ही बंद कर दिया है। हदीस सुन लीजिए, बात वाजे हो जाएगी। आपने फरमाया एक वक्त आएगा महरम रिश्तों में जिना होगा, और ये कब होगा? माँ की भी टांगे नंगी हैं, वो भी जिस्म खोल के घर में फिर रही है, जवान बहन भी ऐसी फिर रही है। तो अगर घर के जवान होते बच्चे फिर अगर उनको देखकर अपनी नजरों को नापाक कर लेंगे तो क्या बड़ी बात है? हमेशा याद रखें, अपने घर में, अपने बच्चों के सामने या कोई दूसरे हैं, कोई ऐसी छिछोरी हरकत, कोई ऐसा लिबास, कोई ऐसी चीज जो बच्चों के दिल से आपकी रिस्पेक्ट खत्म कर दे, उसको खत्म करें। बाज लोग बड़े बच्चों से या दूसरों से तो समझते ही हैं, लेकिन छोटे बच्चों को कहते हैं ये बच्चे ही है ना, नहीं, बचपन से उनके जहन में होता है। हमारी एक सिस्टर है तो वो किसी डे केयर में पढ़ाती हैं, बाद में आगे बोलते हैं उसको, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि बच्चे कुछ इस तरह की नाजेबा हरकतें कर रहे थे, तो पूछा गया क्या, तो कहा हम मामा पापा बन गए। यानी आप इसी से इशारा देखिए कि छोटे बच्चों के सामने जब माँ बाप बेतकल्लुफ है, मिसाल है कैसे क्लोज होके बैठ गए, या कोई अल्लाह ने अगर किसी बात की इजाजत भी दी है तो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, और कई माँ बाप देखिए फिर बच्चों की इन हरकतों की वजह से शर्मिंदा होते हैं जो वो मेहमानों के सामने खोल देते हैं। तो आपने इसको अल्लाह का हुक्म समझकर अपने घर के अंदर अमन और चैन के लिए लेकर आना है। यही चीज़ भाई बहन के रिश्ते में भी है, इसको भी जहन में रखिए, क्योंकि आज के हालात में अब वो वक्त नहीं रह गया कि आप आंखें बंद करके सब्र करें, क्योंकि शैतान वही है जिसने आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया था। अब एक और चीज़ सदे ज़राए जिना में से, वो क्या है, और जो औरतें जवानी से गुजरी बैठी हों, निकाह की उम्मीदवार ना हों, वो अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो इन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वालियां ना हों। ताहम वो भी हयादारी ही बरतें तो इनके हक में अच्छा है, और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। ये कौन सी औरतें, मीनोपॉज वाली? किसको पता कि मीनोपॉज है कि चल गया, कि अभी पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कई सिस्टर्स इसे एक आयत का इस तरह का, तो मैं तो ये कहूंगी कि मजाक करवाती हैं, ऑपरेशन हो गया जी हमारा, हम पे तो पर्दा ही नहीं रहा। यानी एक यंग सिस्टर अपने पूरे जोबन और खूबसूरती के साथ किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वाकई उनकी यूट्रस रिमूव हो चुकी थी, यानी ठीक है उनके अंदर से वो औरत पने की जो एक खास अलामत थी वो खत्म हो गई, कहती है मेरे ऊपर तो पर्दा ही नहीं है। मैंने कहा आप लोगों को बताएंगी, हर मर्द को जाके बताएंगी कि मैंने पर्दा इसलिए नहीं किया कि मेरे अंदर ये चीज नहीं रही। कितनी बेहयाई की बात है। एक वो औरत भी थी जो एक सहाबी को मिली, बूढ़ी अम्मा है, चादरों में लिपटी हुई, अपने आप को छुपाई हुई, कहा अम्मा आपने ये आयत नहीं पढ़ी कुरान की, क्या मतलब क्या बात है, कहीं यदा ना सिया बहुन्ना गैरा मुतबरी जातिम बिजीना। अम्मा जब कुरान आपको कह रहा है कि आप इस उम्र में ये मोटी चादरें या बुरके अबाए उतार दीजिए, तो कहने लगी क्या तुमने आयत का अगला हिस्सा नहीं पढ़ा, वाई यस्ताफिफ ना खैरुल्लाहुन्ना, कि अगर तुम भी बच जाओ तो तुम्हारे हक में भी बेहतर है। बात समझ रहे? तो याद रखिए कि इस्लाम किसी लूप होल को नहीं लेके आता। यहाँ एक और इशारा भी है, कब उतारेंगे, बुढ़ापे में, तो जवानी में फिर पहनेंगे तो उतारेंगे ना, जो जवानी में ही नहीं पहनता तो उसको बुढ़ापे में किसी चीज के उतारने की क्या जरूरत है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला में हया अता करे, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। कोई हरज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले, और ना तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मजायका है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से खाओ। अब जरा देखिए आपके खाने पीने की बातें हो रही हैं, और इस्लाम कैसे लोगों की तबीयतों का लिहाज करता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं, खास सिनेरियो में एक आयत उतरती है। अरब लोग हमेशा मिल के खाते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ा सा थाल रखा हुआ, उसमें पूरा ऊंट रखा हुआ, सब खा रहे हैं और चावल भी बखेर रहे हैं, करते हैं ना, तो वो लोग खाते थे। तो कोई शख्स अंधा होता या लंगड़ा होता या मरीज होता, तो बाज़ दफ़ा ये खतरा होता कि वो बेचारा अपनी उस हैंडीकैपनेस की वजह से नहीं खा सकेगा, तो दूसरे कहीं ज़्यादा ना खा जाए। इस पर सवाल उठा अल्लाह के नबी, हम खा रहे हैं, कहीं हम ज्यादा खा दें दूसरे काम करें, तो उस पर जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है, तुम अपने हिसाब से उस काम को करो। फिर इसी तरह किसके घर से खा सकते हैं किसके नहीं, फरमा इसमें कोई हर्ज नहीं कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से खाओ या अपनी माँ नानी के घरों से खाओ या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी चाबियां तुम्हारी सुपुर्दगी में हो या अपने दोस्तों के घरों से। इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि तुम सब मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो, दुआ खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई है, बड़ी बाबरकत है और पाकीज़ा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्को है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। ये खाने पीने की लिस्ट, इसमें मिसिंग क्या है? बेटों का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अंत व मालुक अली अबीक, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। बेटे के घर पे या बेटी का घर, दोनों को ही ले लीजिए, माँ बाप का पूरा हक होता है जैसे अपने घर पे होता है, इसलिए कि वो वजूद में उसी में है। अब हमारे कल्चर में क्या है, बेटियों के घर से पानी भी नहीं पीना, ये किस आयत की रोशनी में? फिर आप देखिए कि इसमें कितनी मजे की बात है, आपके पास चाबियां हैं किसी के घर की, अब वो क्या कह रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं, चाबी रख लें, अब आपको प्याज की जरूरत पड़ गई, जाइए खोलिए चाबी निकाल कर प्याज लें, बस उसको बता दें, कितना क्या खा सकते हैं जितना उसको बता सके। आप देखिए कि कितनी मोहब्बत है इसमें, इस्लाम रिश्तों की मोहब्बत सिखाता है। और जब भी कभी अपनी फैमिली में हम जाएं तो मुझे ये आयत याद आती है, और मैं सोचती हूँ कि पूरे यकीन से खाओ, और कोई जरूरत ही बस ये कह दिया जाता सब सबके घर से खा लो जायज खा लो, लेकिन असल में यहाँ मोहब्बत से पेश किया गया इन चीज़ों को कि कोई रिश्ता बनाकर रखो ना। कुछ कल्चर ऐसे थे कि जहाँ मिलकर खाना लाजमी होता है, कुछ जो है वो किसी का हाथ भी लग जाए तो उसको फेंक देते हैं जी कि ये पता नहीं किसी नापाक चीज़ का हाथ लग गया। इस्लाम ने दोनों की बीच की बात की है। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें एक और चीज़ भी समझ लीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर चल के ज़िंदगी खूबसूरत कितनी हो जाती है। आप खाते हैं, आप अपने मामू के घर कई दफा खा चुके होंगे, आज के बाद खाने जाएंगे तो क्या कहकर खाएंगे कि सूरत नूर की आयत नंबर 61 पे अमल करने आई हूँ। अब तो फिर मौजे ही मौजे हो गई हैं। नियत अच्छी रखें, खुशी खुशी खाया करें, हलाल रिस्क है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दावत को कबूल करो, शर्त यह कि उसमें हराम ना हो, शर्त यह कि उसमें नाफरमानी ना हो। लेकिन मसला क्या है ना कि फिर उस दावत में 101 चीजें भी तो ना बनी हो ना, वो तो फिर एक ही होगी साल में एक दफा। तो सीधे सीधे रहे, हल्के हल्के रंग से रहे, आप बहुत ज्यादा न रखे। सहाबे कराम में क्या आदत थी आपको पता है? सहाबे कराम में अव्वल तो हर एक के घर रोज खाना ही नहीं पकता था, और खाना पकता था तो क्या होता था, बहुत खूबसूरत वाकयात है उनके इसमें। आप देखिए जैसे हमारे घरों के तो बीच में पूरी दीवारें हैं, उनकी ऐसी नहीं थी। आप पंजाबी में वो चिख का नाम सुना होगा, वो जो कानों की बनी हुई थी, इस तरह की चिखें भी डली होती थी बीच में। तो एक दफा एक सहाबी थे तो उनके घर पे चूल्हे पे हंडिया पक रही थी, थोड़ी देर बाद बाहर आए तो देखा तो हंडिया तो है ही नहीं चूल्हे पे, किधर गई? पूछा मेरी हंडिया किधर गई? कहा वो फलां घर से आए थे वो ले गए, क्योंकि उनके घर में मेहमान आए हैं। जब उनके बाद वापस आए तो उनको देखा, कहा भाई खाने का क्या हुआ? कहा वो मेरे मेहमान आए थे मैं उनके लिए ले गया। तो कहा अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे। हम मोते कहते लो मेहमान तुम्हारे आए, हंडिया मारी चली गई। कितना प्यार है इसमें। आप देखिए कि आज साथ वाली घर में रहते हुए नहीं पता होता कौन है, लोग कहते नहीं बाजार से ले आएंगे, तभी तो सारा दिन गाड़ी बाहर निकलती है, अभी ये ले अभी वो ले। आज भी गांव देहातों में देखें कभी चावल मांग रहे हैं, कभी रोटी मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, फिर नाप नाप के चीनी दे रहे हैं, उसको वापस ले रहे हैं। किसी ने कहा एक आंटी है वो बड़ी अक्लमंद है, जब घी किसी से लेती थी तो जमा हुआ लेती थी, जब वापस करती थी तो पिघला कर देती थी। तो बहरहाल ये है कि एक दूसरे को माफ कर दिया करें, लेकिन लिया दिया करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या मांगना है क्या नहीं, लेकिन वो मामला ना कीजिएगा जो किसी ने किया, कि वो अम्मा ने बेटे को कहा कि बेटा जो हम साई से चमचा मांग के लाओ, जब वो गया और वो चमचा मांगा तो वो कहा कि चलो भाग जो मैं नहीं देती, तो घर आए आंटी ने तो ये कह दिया, कहता कितना बुरा वक्त आ गया, लोग एक चम्मच नहीं देते, जाओ बेटा फिर अलमारी से अपने ही निकाल लो। तो ये ना कीजिए कि आप अपने टमाटर बचाते रहे और हमसायों के टमाटर खाते रहे। तो लेकिन यह कि इस्लाम मोहब्बत, अल्लाह हदीस में आता है कि मोमिन मोहब्बत करता भी है और उससे मोहब्बत की भी जाती है, और अल्लाह ताला हमें ऐसा ही बना दे। अब आगे मोमिनों की तारीफ, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन तो असल में वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने। जरा से इस पर रुकिए, फिर सुनिए इस तारीफ को। मोमिन तो असल में वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने। अक्सर कहाँ से मानते हैं? जुबान से, अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दिल से माने। और जब किसी इज्तमाई काम के मौके पर रसूल के साथ हों तो इसे इजाजत लिए बगैर ना जाएं। आखिरी रुकू है, पूरी सूरत एतात से भरी हुई। बीच में हमने कायनात में फैली हुई मखलूकात से टीम वर्क सीखा, अब यहाँ टीम वर्क के तकाजे। दीन के काम के तकाजों में एक बहुत बड़ा तकाजा क्या था कि जब किसी इज्तमाई काम के मौके पर रसूल के साथ हों तो इससे इजाजत लिए बगैर ना जाएं। क्यों? इसलिए कि रसूल को पता होना चाहिए कि कौन कहाँ है। अब अगला हिस्सा देखिए, ये पूरा एक रुकू पढ़ें, इसमें बहुत खूबसूरत मिसालें हैं हम सब के अमल के लिए। ऐ नबी, जो लोग तुमसे इजाज़त मांगते हैं वही अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, बस जब वो अपने किसी काम से इजाज़त मांगें तो जिससे तुम चाहो इजाज़त दे दिया करो, और ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआ मगफरत किया करो, अल्लाह यकीनन गफूर रहीम है। यानी अगर साथियों से कहा कि इजाज़त लेकर जाएं तो रसूल को भी साथ ही कह दिया कि अब आप देखें कि वाकई जहनी नजर है, मजबूरी है, जाने दीजिए, और कौन है जो बहाने से जा रहा है या कौन है जिसको उसका कोई अल्टरनेट दे दिया जाए तो गुजारा हो सकता है, चॉइस दे दीजिए लोगों को। तो दोनों के हालात को देखकर, यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इजाजत दे दें, कहा उनके हालात को देखो। और ये जो आखिरी जुमला कितना खूबसूरत है कि अच्छा इजाजत भी दे दो और उनके साथ दुआ मगफरत भी करो। किस बात की? चाहे मजबूरी में उठ के गए हैं, चाहे इन्होंने अपना काम की वजह किसी बहुत ही पर्सनल रीजन से छोड़ी है, लेकिन उस नेकी से महरूम हो गए हैं और कोई गुनाह हो गया इनसे, उस पर अल्लाह से माफी मांगो। क्या समझ आई? मजबूरी में भी, मुश्किल में भी अगर हम नेकी से रुकते हैं ना بس آپ ایک چھٹی کر لیتے ہیں، ہے مجبوری، جینین ہے، اٹس اوکے، بٹ دعائے مغفرت کریں کہ اللہ آج میں نے ایک کمٹمنٹ نبھائی نہیں ہے، آج میری کوئی ذاتی چیز میرے کسی اجتماعی کام کے آگے آ گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے. ہے کوئی اتنا ڈسپلن سکھانے والا دین؟ اور آگے دیکھیے اس سے بھی خوبصورت بات ہے، لا تجلوا دعاء الرسول بینکم، مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو، یعنی ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. رسول کا بلانا عام لوگوں کا بلانا نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جتنا جس کا مقام ہوتا ہے اتنا اس کا درجہ بھی ہوتا ہے، کہ اللہ کے نبی بلائیں ادھر آؤ، تو اب تم سوچو اچھا چلو وہ میرے دوست نے بھی بلایا تھا تو میں نے کہا تھا اچھا ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. یعنی بات کو سمجھو، ادب کے ساتھ بات کرو. رسول جب تمہیں بلائے، آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بلائیں اپنے دور میں جب تھے تو نماز چھوڑ کے بھی جانے کا حکم تھا. جیسے آج ماں باپ میں سے کوئی پتہ ہے ان کو نماز کا بچہ پڑھ رہا ہے پھر بھی پکار دے تو نماز توڑ کے ان کی بات سننے کا حکم ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مقام رکھا ہے. تو رسول کا ایک مقام تھا، لیکن اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. ایک دوسرے کی آڑ کیوں لیتے تھے؟ پتہ ہی نہ چلے. یا تسللون، کبھی ڈکشنری میں جا کے اس کو پڑھیں، انسان کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں. اللہ نے جو لفظ جہاں استعمال کیے، فرمایا کہ رسول کی نظروں سے چھپنے کے لیے سائٹ پہ ہو جاتے ہو تاکہ جب نکلوں تو پتہ نہ چلے. تو فرمایا رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا پتا چلا؟ گناہ کے کام پہ تو خطرہ ہے ہی، نیکیوں کے کام پہ اور خطرہ ہے. تو پارے کا تھیم کیا تھا؟ نیکیاں کریے اور ڈریے. آپ دیکھیے کہ اس آخری حصے میں جو بات کہہ دی گئی کہ نیکی کرنے کے بیچ میں انسان سے جو کمی بیشی ہوتی ہے نا، اس پہ بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اکثر اپنے اوپر لے کر کہتی ہوں کہ ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل ہیں کہ اس پہ پھر جا کے رو کے استغفار کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے اس گناہ کی وجہ سے اس نیکی کو ضائع نہ کرنا. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنے پوسیسو تھے؟ کیا اتنے زیادہ تھے کہ میں نے کہہ دیا تو اب ضرور آؤ؟ نہیں، کام بڑا سنجیدہ ہے، سینسٹیو کام ہے. جہاز چلاتے ہوئے اگر کپتان تھوڑا سا ادھر سے ادھر دیکھ لے تو آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. تو دین کا کام حساس کام ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، مدینہ میں آنے کے بعد جو منافقین کا اتنا تذکرہ ہے مدنی صورتوں میں، آپ نوٹ کیجئے اس کی وجہ کیا ہے، کہ وہ دل سے اطاعت نہیں کرتے تھے. وہ صرف وہ کام کرنا چاہتے تھے جو ان کو ایزی لگتے تھے، یا نماز، روزہ، حج، زکات. عبداللہ بن ابی جیسا شخص، راس المنافقین کہتے ہیں اس کو، اس کے باوجود آپ دیکھیے وہ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتا تھا، بٹ اس کا دل نہیں تھا اللہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ دل سے محبت نہیں تھی. اور جس کو نبی سے محبت نہیں ہوگی، نہ واللہ ہی اس کو نہ تو نبی کے لائے ہوئے اس دین سے ہو سکتی ہے اور نہ نبی کی چھوڑی ہوئی اس کتاب سے ہو سکتی ہے. تو ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ دل سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے محبت دے. فرض سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے نہ مانا تو جہنمی ہوں گے، یہ تو سب کرتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دل کھول دے، ہم دل کی خوشی کے ساتھ، جیسے ہم دنیا کے دوسرے کام دل کی خوشی سے کرتے ہیں، تو اللہ ہم تیرے راستے کے کاموں کو بھی اسی طرح سے کریں. تو یہ تھی سورت نور. اب اس کے بعد اگلی سورت فرقان ہے. فرقان بھی اصل میں نور ہی کا ایک دوسرا نام ہے. آپ یہ کہہ لیں حق اور باطل کا فرق. فرق کب پتہ چلتا ہے؟ جب روشنی ہو. اب آپ اور میں ان پاروں سے گزر رہے ہیں جس کے بعد میرے آپ کے اندر بھی فرقان پیدا ہونا چاہیے. کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، میرے اندر کون سی اچھی آتے ہیں، کون سی بری ہیں، کہاں ایمان ہے، کہاں ایمان کی کمی ہے، کہیں نفاق کا کیڑا تو نہیں، کہیں فسق تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر کفر تو نہیں چھپا ہوا. تو جس کو یہ نظر مل گئی وہ بہت بچ گیا.